भागवत सार की श्रृंखला में आज दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय पर चर्चा है। इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक जो श्रील प्रभुपाद कई बार दोहराया करते थे, इसको पढ़ेंगे और फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। कृपया दोहराइए। किराटुनांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभाय वनाख सादयः येन्ये च पापा यदपाशयाशया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। किराठुनांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभाय वनाख सादयः। यन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। किराठुनांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभाय वनाख सादयः। यन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। किराट प्राचीन भारत का एक प्रांत, हून जर्मनी तथा रूस का एक अंग, आंध्र दक्षिण भारत का एक प्रांत, पुलिंद ग्रीक, पुलकशा अन्य प्रांत, आभीर प्राचीन सिंध का एक भाग, शुंभा अन्य प्रांत, यवनाः तुर्क, खसादयः मंगोल का प्रांत, ये वे भी अन्य अन्य च भी पापः पाप में प्रवृत्त रहने वाले, यत जिसका अपाश्रय आश्रय भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध्यन्ति तुरंत शुद्ध हो जाते हैं, तस्मै उन प्रभ विष्णवे शक्तिमान विष्णु को नमः, मेरा सादर नमस्कार है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। किराट हून आंध्र पुलिंद पुलकश आधेर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे हम लोग हर अध्याय के प्रारंभ में सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहरा कर उनसे कृपा की याचना करके फिर अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं, तो उन प्रार्थनाओं को दोहराएंगे।
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधु तदायि अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेरणारत्कण्ठयोऽसुरा।
हरे कृष्ण। तो दूसरे स्कंद में चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले विभाग की। जैसे हमने बताया था कि ये 10 अध्याय तीन विभागों में बटे हुए हैं। पहला विभाग पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक, जहाँ पर भक्ति की सर्वोत्कृष्टता का वर्णन है, कैसे भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्कृष्ट है। और फिर अब प्रारंभ करेंगे दूसरा विभाग चौथे अध्याय से लेकर सातवें अध्याय तक, जहाँ सर्ग और विसर्ग इन दो विषयों का वर्णन है। संक्षेप में सर्ग अर्थात प्राथमिक स्तर की रचना सृष्टि की और विसर्ग द्वितीय स्तर की। और फिर अंतिम भाग होगा आठवें अध्याय से दसवें अध्याय तक, जहाँ परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे आठवें अध्याय में और नौवें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी चतुश्लोकी भागवत को प्रकट करेंगे और फिर अंत में वे दस विषयों को भागवत के दस विषयों को कहेंगे। तो ऐसे पूरा स्कंद है, दूसरा स्कंद। तीन अध्याय हो चुके हैं। पहले अध्याय में हमने देखा सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज के प्रश्न जो 19वें अध्याय में पहले स्कंद के थे उनको सुनकर बड़ी प्रसन्नता से उत्तर देना प्रारंभ किया और फिर पहले अध्याय में उन्होंने भक्ति की प्रथम सीढ़ी, आत्म साक्षात्कार की प्रथम सीढ़ी का वर्णन किया, अर्थात भगवान के विराट रूप पर ध्यान करना, धीरे धीरे भगवान का स्मरण करना इत्यादि। फिर थोड़ा सा वो आगे बढ़े और उन्होंने परमात्मा, वो भगवान जो हम सबके हृदय में हैं, उनका वर्णन किया। तो परमात्मा साक्षात्कार, पहले ब्रह्म साक्षात्कार, फिर परमात्मा साक्षात्कार और फिर तीसरे अध्याय में उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन किया। तो ऐसे ये तीन अध्याय हम लोग अब चर्चा कर चुके हैं और अब चौथे अध्याय में परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे। तो जब हमने सुना तीसरे अध्याय में सुत गोस्वामी ने कह दिया ठीक है, सारे प्रश्नों का उत्तर हो गया, तो शौनक ऋषि ने उनको प्रेरणा दी, उनसे और प्रार्थना की कि हम सुनना चाहते हैं, क्या लाभ है ऐसे कानों का जो कृष्ण कथा नहीं सुने, क्या लाभ है ऐसी आँखों का जो भगवान के दर्शन नहीं करें, सर जो झुके नहीं इत्यादि। तो फिर सुत गोस्वामी अब आगे कहने लगे कि अब आगे क्या हुआ। तो इस अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर करीब चौथे श्लोक तक, चार श्लोकों में वो परीक्षित महाराज की अवस्था का वर्णन करते हैं कि परीक्षित महाराज को क्या प्रभाव हुआ अब भगवान की भक्ति का विषय सुनकर। और फिर पांचवें श्लोक से लेकर आगे दसवें श्लोक तक परीक्षित महाराज के प्रश्न हैं। परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे, परीक्षित महाराज ने तीन प्रश्न पूछे, तो वो तीनों प्रश्न पांचवें से लेकर दसवें श्लोक तक में दिए गए हैं। और फिर ग्यारहवें श्लोक से सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ करते हैं, अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। सबसे पहले तो भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर वो आगे भगवान से कृपा की याचना करते हैं कि वही भगवान वो मुझ पर कृपा करें, मुझ पर प्रसन्न हों। और फिर अंत में, अंतिम श्लोक में ब्रह्मा जी और नारद के संवाद को बोलना प्रारंभ करते हैं। तो क्योंकि ये अध्याय में प्रश्न हुआ कि ये सृष्टि की प्रक्रिया कैसे होती है, इसीलिए इसका शीर्षक रखा गया सृष्टि प्रक्रम, कैसे सृष्टि की रचना होती है। वैसे अपनी प्रार्थनाओं में सुखदेव गोस्वामी इस बात को समझाते भी हैं कि कैसे भगवान सृष्टि करते हैं, लेकिन वो एक प्रार्थनाओं के रूप में कह दिया। और फिर ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद के द्वारा अगले दो तीन अध्यायों में उत्सर्ग और विसर्ग का वर्णन करेंगे। तो सुत गोस्वामी प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक से। वो कहते हैं कि किस तरह से जब अब तक उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुन लिया, तो उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। तो अभी तक वैसे भी पूर्ण रूप से भगवान का स्मरण कर रहे थे, लेकिन अब ये कथा सुनने के बाद, ये सुनने के बाद कि जीवन में कुछ और नहीं है, भक्ति ही, केवल कृष्ण भक्ति, तो अब पूर्ण रूप से उनका मन कृष्ण में लग गया आंतरिक तौर से। और फिर आगे सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं बाहरी तौर से भी पूर्ण रूप से विरक्त हो गए अपने परिवार से, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने राज्य, कोई चिंता नहीं, अब केवल कृष्ण की कथा वो सुनना चाहते हैं। अब उनके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं वो केवल कृष्ण कथा को प्रकट करने के लिए हैं। तो पूर्ण रूप से मन अब कृष्ण में लग गया। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसे यहाँ पर बताया गया कि परीक्षित महाराज का मन पूर्ण रूप से कृष्ण में लगा है, शुद्ध भक्ति की अवस्था। पूर्व में शुद्ध भक्ति का वर्णन सुना और सुनने का प्रभाव ये हुआ कि पूर्ण रूप से कृष्ण में मन लग गया। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति या शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए दो आवश्यकताएं हैं, बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद कहते हैं इट इज एसेंशियल, ये आवश्यक है भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो क्या दो अवस्थाओं का वर्णन करते हैं प्रभुपाद? वो कहते हैं पहली अवस्था जहां व्यक्ति को एक ऐसे परिवार में जन्म मिले जो वैष्णव परिवार हो, ये एक अवस्था। जैसे पिछले अध्याय में हम लोग देख रहे थे, प्रभुपाद ने अपना खुद का उदाहरण दिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उदाहरण दिया और परीक्षित महाराज का वो वर्णन कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसे मीराबाई का भी नाम लिया प्रभुपाद ने। तो ऐसे यहाँ पर वो वर्णन करते हैं कि एक चाहिए कि ऐसे वैष्णव परिवार में जन्म हो जहाँ भक्ति प्रारंभ से हो, और दूसरा एक प्रामाणिक गुरु की कृपा, उनके निर्देशों का पालन। और प्रभुपाद कहते हैं कि परीक्षित महाराज बड़े भाग्यवान हैं कि उनको ये दोनों चीज़ें प्राप्त हैं। पांडवों के कुल में जन्म लिया है उन्होंने, और शुकदेव गोस्वामी जैसे आध्यात्मिक गुरु उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो ये दो अवस्थाएं प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें अति आवश्यक हैं, भक्त परिवार में जन्म लेना तथा प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना। तो ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। तो अगर किसी का जन्म नहीं भी हुआ वैष्णव परिवार में, तो फिर उनके लिए क्या है? उनके लिए भगवान के भक्तों की कृपा, उसको ही हमें प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसा ये जो भक्त एक होते हैं जो पूर्ण रूप से भगवान पर अपना ध्यान कर सकते हैं, वो कैसे होता है? परीक्षित महाराज के उदाहरण से हम देखते हैं, बहुत प्रामाणिकता से, गंभीरता से श्रवण करने से। अभी उन्होंने श्रवण प्रारंभ भी किया है, अभी तो पहला स्कंद केवल एक ही अध्याय हमने सुना है, एक ही स्कंद हुआ है, अभी तो दूसरे अध्याय स्कंद के दो ही अध्याय हुए हैं, तीन अध्याय। लेकिन क्योंकि बड़े ध्यान से उन्होंने श्रवण किया, उनका हृदय कृष्ण में लग गया। तो एक भक्त को अगर अपना कृष्ण हृदय, कृष्ण के हृदय में अपने आप को स्थापित करना है या कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित करना है, श्रवण करना चाहिए गंभीरता से, प्रामाणिकता से, ये जानते हुए कि ये श्रवण ही मुझे साक्षात्कार करा सकता है श्री कृष्ण का। इसलिए श्रवण बहुत आवश्यक है। तो जो श्रवण करते हैं प्रामाणिक गुरु से परंपरा में, वो निश्चित कृष्ण को प्राप्त करते हैं। और जहां फिर उसके श्रवण का क्या लाभ होता है, दूसरे श्लोक में बताते हैं, पूर्ण रूप से विरक्ति। फिर कोई चिंता नहीं थी परीक्षित महाराज को। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मुक्ति का क्या अर्थ है। प्रभुपाद कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ है देहात्म बुद्धि से परे जाना। अगर कोई व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, उसको देहात्म बुद्धि से परे जाना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य की शुरुआत में ही लिखते हैं, मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना। अब देहात्म बुद्धि क्या है? प्रभुपाद बहुत सुंदर ढंग से इस तात्पर्य में समझाते हैं। वो कहते हैं व्यक्ति सोचता है कि आनंद चाहिए, आनंद के लिए विवाह करता है किसी स्त्री से, फिर उसका फल क्या होता है? संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। अब संतान है तो क्या चाहिए? रहने के लिए स्थान चाहिए, पत्नी है, स्थान, बच्चे हैं तो स्थान चाहिए, फिर स्थान चाहिए तो उसको मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए धन चाहिए, फिर धन चाहिए, फिर अपना स्तर बनाए रखने के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए समाज में पैसा इकट्ठा करना है, संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए, और जीवन भर व्यक्ति यही करता रहता है। प्रभुपाद कहते हैं ये देहात्म बुद्धि है। तो देहात्म बुद्धि मतलब देह को ही आत्म मानना और फिर उसके आधार पर सारे कार्य करना। जब व्यक्ति देह को आत्म मानता है तभी सारे कार्य उसके जो भी होते हैं वो देहात्म बुद्धि पर है। इसीलिए भगवान की भक्ति में आवश्यक है कि हम इस आसक्ति से परे आएं। ये जो देहात्म बुद्धि है, मैं और मेरा, ये मेरा शरीर, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा समाज, ये मेरा घर, ये मेरा धन, ये मेरा व्यापार, देहात्म बुद्धि, उससे परे आना, उस आसक्ति को त्यागना, ये मुक्ति का मार्ग है। प्रभुपाद कहते हैं बहुत सुंदर बात कि दो तरह की आसक्तियां होती हैं। ये तात्पर्य आप लोग फिर पढ़िएगा पहले दूसरे श्लोक के, बहुत सुंदर तात्पर्य। प्रभुपाद कहते हैं दो तरह की आसक्तियां होती हैं। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है, अंधकूपम महाभयानक मोह माया जाल। प्रभुपाद कहते हैं एक आसक्ति ये अंधकार का मार्ग है, लेकिन दूसरी आसक्ति ये प्रकाश का मार्ग है। तो पहली आसक्ति क्या है? देहात्म बुद्धि। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्यस्य सतस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तो ये पहली आसक्ति है देहात्म बुद्धि, देह और उससे संबंधित सभी चीजों से आसक्ति, अंधकार का मार्ग है। प्रभुपाद लिखते हैं इस तात्पर्य में। और दूसरा प्रकाश का मार्ग है कृष्ण से आसक्ति। जब तक कृष्ण से आसक्ति नहीं होगी तब तक हम प्रकाश की ओर नहीं जा सकते। इस तात्पर्य में से हम थोड़ा पढ़ना चाहेंगे, बहुत सुंदर ये तात्पर्य है। प्रभुपाद कहते हैं घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। अर्थात जब तक आपको घर से आसक्ति, आप कृष्ण से आसक्त नहीं हो सकते। कृष्ण से आसक्त होना है तो घर से विरक्त होना है। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है तो दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता, और जहां अंधकार रहता है वहां प्रकाश नहीं रहता। जहां हम अंधकार में हैं, देहात्म बुद्धि में हैं, मोह माया जाल अंधकूप वहां भयानक, कृष्ण नहीं रहते। लेकिन जहां कृष्ण तहां नहीं माया का अधिकार। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि जो दक्ष भक्त होता है भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकता है, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर। हम लोग ये प्रार्थनाएं सुनते हैं शास्त्रों में, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां तमस नहीं चाहिए, ज्योति चाहिए। तो अंधकार नहीं प्रकाश का मार्ग, वही चीज यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय। और प्रभुपाद बताते हैं आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कैसे अंधकार को प्रकाश की ओर मोड़ा जाता है। हम सब अंधकार में हैं, हम कैसे इसको प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह सारे गृहस्थ अपनी सारी तथाकथित भौतिक संपत्ति को भगवान की सेवा से जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं। किंतु जो प्रशिक्षित नहीं हैं, प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में हर स्थान पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण को जोर दिया। तो यहाँ कहते हैं कि जो ट्रेन नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, वो हर वस्तु भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता। लेकिन जिसको प्रशिक्षण मिला है वो हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा सकता है। उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए, तभी वे भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकता है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब तक आसक्ति है इस जगत में, कृष्ण से आसक्ति नहीं हो सकती। हम लोग कई बार भक्ति करते हैं परिवार समाज में आसक्त रहकर, और साथ साथ कृष्ण भक्ति करके। प्रभुपाद कहते नहीं हो सकता, बहुत स्पष्ट लिख दिया प्रभुपाद ने। अगर आपको कृष्ण से आसक्ति चाहिए, प्रकाश का मार्ग चाहिए, अंधकार को त्यागना ही होगा। ये स्वाभाविक है, आप अंधेरे में खड़े रहकर प्रकाश प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको प्रकाश चाहिए तो अंधेरे को त्यागना होगा। कैसे हो सकता है कि व्यक्ति अंधकार में खड़ा है और सारे प्रकाश को देख रहा है? हो ही नहीं सकता। अगर आप अंधेरी अमावस्या की रात में बाहर हैं तो कोई प्रकाश नहीं, बड़ा अंधकार होता है, लेकिन पूर्णिमा की रात में बाहर हैं, चंद्रमा का बहुत सुंदर प्रकाश होता है, अंधकार नहीं रहता। और उस समय अगर कोई व्यक्ति चाहे कि ये प्रकाश नहीं चाहिए तो क्या करना है, अपने आप को ढक लेना। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण, आवृत्तम ज्ञानमेतेन, अपने ज्ञान को ढक लेना, प्रकाश नहीं होगा। और यही हमने किया है, आसक्तियों के कारण, अज्ञान के कारण हमने अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आवृत्तम ज्ञानमेतेन, उस ज्ञान को आवृत्त कर लिया है, ढक लिया है। इसीलिए वो प्रकाश है लेकिन हम तक पहुंच नहीं रहा। तो अंधकार जहां है वहां प्रकाश नहीं हो सकता, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। चुनाव हमें करना है, क्या हम अंधकार में ही रहना चाहते हैं, अपनी आसक्तियों में, अपने भोगों में, अपने कर्मों में, अपने घर में, अपने समाज में, क्योंकि आसक्ति है, मार्ग है, स्पष्ट मार्ग है, लेकिन मेरी आसक्ति है एक व्यक्ति में, एक समाज में, एक घर में, मैं छोड़ना नहीं चाहता। समझ में आ गया है, जानता हूं, फिर भी छोड़ना नहीं चाहता, अज्ञान है। क्या लाभ है ऐसे जीवन का जहां हमें पता हो कि वो हमारे लिए सामने मार्ग है, प्रकाश का मार्ग। अगर मैं इस मार्ग को लेता हूं तो कृष्ण की प्राप्ति है, और दूसरी ओर भौतिक आसक्ति, अंधकार का मार्ग, फिर भी मैं छोड़ नहीं पाता। इसीलिए हमें यह जानना, प्रभुपाद इस तात्पर्य में इसीलिए जोर दे रहे हैं, अंधकार का मार्ग नहीं, प्रकाश का मार्ग। और कैसे? श्रवण और कीर्तन के द्वारा, सेवा के द्वारा। प्रभुपाद यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि बड़ी अच्छी तरह से महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने से पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का 700 वर्ष तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। तो देखिए प्रभुपाद के 700 वर्ष, पता नहीं 700 क्यों लिखा प्रभुपाद ने। पेशेवर व्यक्ति जो केवल पैसे के लिए आपको कथा सुना रहा है, उसका कथा सुनाने का उद्देश्य क्या है, कितना मेरे बैंक अकाउंट में जमा किया आपने, कितना मैंने कमा लिया, कथा करने के पहले ही कह दिया आने वाला हूँ, कितना पैसा रेडी रखिए, एडवांस 50% तब आएंगे। पेशेवर कथाकार से, इसको मैं फिर से पढ़ते हैं, फिर से सुनिए, महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का 700 वर्षों तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। अब बताइए 700 वर्ष, जीवन 70 वर्ष नहीं होता आजकल, तो 700 वर्ष तक भी श्रवण करेंगे कोई लाभ नहीं। तो इसका अर्थ क्या है, कथा पेशेवर व्यक्ति से नहीं सुननी चाहिए, चाहे कितनी ही आनंद देने वाली क्यों ना हो, कितने ही बढ़िया गीत क्यों ना सुनाए, कितनी बड़ी बढ़िया ब्रज कथा क्यों ना सुनाए, कोई लाभ नहीं। हमें उनसे सुनना है जो प्रमाणिक गुरु की शरण में है, प्रमाणिक परंपरा में है, और जो स्वयं विरक्त हैं। सुखदेव गोस्वामी, उनको क्या लेना देना था, वो परीक्षित महाराज को इसलिए कथा नहीं सुना रहे थे कि ये मरने वाले आधा राज्य मुझे देके चले जाएंगे, कोई इच्छा नहीं थी। यस, जैसे ही भागवत खत्म की, सुखदेव गोस्वामी उठ के चले गए, इंतजार भी नहीं किया कि परीक्षित महाराज जाने वाले हैं, इंतजार करें, तक्षक आकर मारे, बस उठे चले गए, हो गया काम, पूर्ण रूप से विरक्त। वो भागवत इसलिए नहीं सुना रहे उनको कि कुछ मिलने वाला है, एक पैसा नहीं लिया, कुछ दूध भी नहीं लिया, वो तो जनरली लोगों के घर जाकर थोड़ा दूध ले लिया करते थे, परीक्षित महाराज से तो वो भी नहीं लिया, रुके ही नहीं, कथा खत्म की, उठे चल दिए, परीक्षित महाराज देख रहे क्या हुआ, हो गया बस, भोग में चले गए। तो ऐसे व्यक्ति से हमें सुन, कोई इच्छा नहीं कि मरने वाले थोड़ा कुछ मुझे दे जाए ताकि कपड़े नहीं पहनने के लिए थोड़े कपड़े वपड़े पहनूं, कोई इच्छा नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि हमें श्रवण के द्वारा हम उस मुक्ति के पथ को या अंधकार को हम प्रकाश में बदल सकते हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज का वर्णन करते हुए फिर वो कहने लगे कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे। तो परीक्षित महाराज ने तीन प्रश्न पूछे, अपने आगे आने वाले इन श्लोकों में तीन प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज। पहला प्रश्न, भगवान इस भौतिक ब्रह्मांड की, इस भौतिक सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, जो अचिंतनीय है, इसका चिंतन नहीं कर सकते कैसा जगत है, तो भगवान कैसे इस ब्रह्मांड को बनाते हैं, क्या करते हैं, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, भगवान अपनी शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी शक्तियों को कैसे इस ब्रह्मांड की रचना इत्यादि में वो लगाते हैं। और तीसरा प्रश्न उनका था कि जो प्रकृति के गुण हैं इनमें कैसे, क्या भगवान सीधे इनका स्पर्श करते हैं या अपने विस्तारों के द्वारा कैसे करते हैं, क्योंकि उन्हें आश्चर्य था कि तीन गुणों के तो भगवान परे हैं और जगत को बनाना है तो तीन गुणों का स्पर्श करना है तो कैसे बनाते हैं। तो ये प्रश्न, तीन प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किए। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में आएगा। तो तीन प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने सर्ग विसर्ग इस विषय को प्रकट करने के लिए कहा। अब सुखदेव गोस्वामी से शुद्ध भक्ति की बात सुन चुके हैं, 7 दिन बाकी हैं उनके पास, उनको तो जाना है भगवान के धाम। कृष्ण की लीला सुनने से पहले क्यों उन्होंने ये कामना की कि मुझे सृष्टि की रचना सुननी है। परीक्षित महाराज सीधे कहने चाहिए कि बस कृष्ण कथा सुनाइए, कैसे कृष्ण ने लीला की, कैसे गोपियों के साथ रास लीला की, बस वो श्रवण करना है मुझे, टाइम नहीं है मेरे पास, 7 ही दिन बाकी हैं। लेकिन यहाँ वो पूछ रहे कि बताइए कैसे भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, कैसे अपनी शक्तियों को वो उसमें लगाते हैं, कैसे तीन गुणों को स्पर्श वो करते हैं, सीधे करते हैं या अपने विस्तार के द्वारा करते हैं, क्या आवश्यकता है उनको ये प्रश्न करने की। आवश्यकता ये है, कई कारण। पहला कारण, क्यों उन्होंने सृष्टि विषय प्रश्न किए, क्योंकि भगवान से संबंधित जो भी है वो दिव्य है। सृष्टि की रचना भगवान करते हैं, इसलिए सृष्टि की रचना भी दिव्य है। भले ये भौतिक जगत है लेकिन जो प्रक्रिया है, जो कार्य है भगवान का, वो दिव्य है, क्योंकि ये एक लीला है भगवान की। भगवान की लीलाओं में कई प्रकार की लीलाएं होती हैं और उनमें से एक प्रकार है सृष्टि लीला, चिन्मय लीला, सृष्टि लीला, कृपा लीला, ये सब भगवान की लीलाएं। तो उनमें से एक है सृष्टि लीला। तो ये सृष्टि, ये सृजन भगवान की एक लीला है, एक खेल है भगवान का। जैसे छोटा सा बालक कुछ खिलौनों से खेलता है, तोड़कर फेंक देता है, भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, संहार कर देते हैं। तो लीला, और क्योंकि भगवान की लीला है इसीलिए दिव्य है। तो पहला कारण, हमें क्यों ये सृष्टि का विषय सुनना चाहिए, कैसे सृष्टि बनी, कैसे भूमि जल इत्यादि सब आया, भगवान की लीला है। और भगवान से संबंधित हर चीज भक्त के लिए श्रवणीय है। दूसरा कारण, कई बार लोग कहते हैं भगवान महान है, सब कहते हैं भगवान महान है। कितने महान हैं किसी को नहीं पता। सबसे गॉड इज ग्रेट, हाउ ग्रेट वी डू नॉट, बस गॉड इज ग्रेट। तो उनकी महानता जब वो हम अगर अपनी तुलना करने लगते हैं तो कैसे होता, प्रभुपाद मेंढक का उदाहरण दिया करते थे। तो एक कुएं में रहने वाला मेंढक, दूसरा एक मेंढक समुद्र से आता है और उस मेंढक को समझाता है समुद्र बहुत बड़ा होता है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से एक प्रवचन में समझाते हैं कि वो मेंढक कहने लगा, अरे कितना बड़ा, एक हाथ बड़ा, दो हाथ बड़ा, अरे नहीं बहुत बड़ा होता, अरे नहीं तीन हाथ बड़ा, नहीं बहुत बड़ा होता। प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो
हमारी चिंतन से हम भगवान को महान मानने लगते हैं कि भगवान महान है। कितने महान? अरे मैं 4 किलो उठाता हूँ, भगवान 50 किलो उठा लेंगे, इतने ही तो महान। तुलना हम लोग करते हैं, जैसे वो मेंढक करते हैं, एक हाथ ठीक है, इससे डबल होगा, 3 टाइम होगा, 4 टाइम। तो प्रभुपाद कहते हैं अरे एक हाथ, प्रभुपाद कहते हैं एक हाथ हाथ बोलने से क्या समुद्र का नाप सकते हैं? समुद्र तो बहुत बड़ा है, तुम्हारा तो कुआं छोटा सा है। तो इसी तरह हम लोग भगवान की महानता को कैसे जान सकते हैं? भगवान की महानता को तो कोई नहीं जान सकता, भक्त भी अपने साक्षात्कार के अनुसार ही भगवान की महानता को प्रस्तुत कर सकते हैं। वो भी पूर्णता में भगवान की महानता को नहीं जानते, क्योंकि भगवान की महानता तो बढ़ती रहती है क्षण भर, हर क्षण। तो क्या क्या कारण है सृष्टि की वर्णन करने का? हम ये जाने कि भगवान कितने महान हैं, महान हैं लेकिन कितने महान हैं, क्या क्या करते हैं इस सृष्टि में, ये कारण के लिए हमें सृष्टि का रचना का श्रवण करना चाहिए। तीसरा कारण सृष्टि के रचना की श्रवण का, सीधे भगवान की लीलाओं में जंपिंग नहीं करना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे ही भागवत कथा का वर्णन आता है, कोई लोग भागवत कथा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? रासलीला। तो भगवान की लीलाओं में सीधे कूद नहीं सकते, हमें क्रम से जाना होगा। जब ये सृष्टि लीला, भगवान की अन्य लीलाओं को सुनते सुनते जब हम भगवान की सर्वोच्च लीला तक पहुंचेंगे, तब हम उन लीलाओं को समझ सकेंगे। तो इसीलिए सृष्टि की लीला सुनने का कारण ये है कि हम भगवान की जो श्रेष्ठतम लीला है, रास लीला इत्यादि, उसको ठीक से समझ सकें। इसीलिए हमें सृष्टि की लीला को सुनना चाहिए, क्योंकि सृष्टि की लीला को नहीं सुनेंगे, भगवान कौन है, उनकी शक्तियां क्या है नहीं जानेंगे, तो फिर कैसे जान पाएंगे कि जब भगवान गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, उन गोपियों के साथ जो दूसरों की पत्नियां थीं, उन गोपियों के साथ जो उनकी पत्नियां नहीं थीं, जिनका विवाह नहीं हुआ था, तो भगवान ने बहुत गलत किया, अनैतिक कार्य किया। लेकिन अगर हम ये सुनेंगे कि भगवान है कौन, कैसे सारी सृष्टि की वो रचना करते हैं, कैसे उनकी शक्तियां हैं, फिर उनकी शक्तियां ही गोपियों का रूप लेती हैं और भगवान उनके साथ लीला करते हैं, शक्तिमान अपनी ही शक्ति से लीला करता है, तो कोई खोट दिखाई नहीं देगी। इसलिए भगवान की लीलाओं को समझने के लिए, सर्वोच्च लीलाओं को समझने के लिए हमें सृष्टि लीला का श्रवण करना चाहिए। और यही कारण है कि परीक्षित महाराज अब सृष्टि लीला के विषय में प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो इस चीज़ को समझना चाहिए हमें कि सृष्टि लीला भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद समझाया करते थे कि जैसे रास लीला है, जैसे हमें उसका श्रवण करना चाहिए, वैसे ही कृष्ण जो युद्ध में युद्ध करते हैं उसका भी श्रवण कीजिए। कृष्ण की सारी लीलाएं शुद्ध करती हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखा, सुखदेव गोस्वामी जो पूर्ण विरक्त हैं उस प्रेम पत्र को कह रहे हैं, विवाह की बातें कर रहे हैं। अब बताइए एक विरक्त व्यक्ति के लिए विवाह की बात करना अच्छी बात है? कैसे विवाह हुआ, क्या हुआ, कैसे किया, कितने राजाओं को मारा, क्या जरूरत है? अरे विरक्त हो ये सब बातें नहीं करो। सुखदेव गोस्वामी आनंद लेकर बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण गए, कैसे शिशुपाल था वहां पर, कैसे सब हुआ। तो ऐसे ये सारे वर्णन करने के बाद, तो क्यों वर्णन है ये सब? कृष्ण से संबंधित दिव्य चीजें हैं, लेकिन वो कब समझेंगे हम? नहीं तो एक साधारण चीज समझ लेंगे, जैसे आजकल की फिल्मों में दिखाया जाता है हीरो हीरोइन को लेकर भाग गया, तो वो साधारण चीजें नहीं है कृष्ण की। इसको समझने के लिए सृष्टि लीला समझे कि कौन है कृष्ण, और अगर वो रुक्मिणी का हरण कर रहे हैं तो रुक्मिणी कौन है, कृष्ण कौन है, सारी चीजों के स्वामी, सब कुछ उनसे आया है। तो कृष्ण माखन भी चुरा रहे हैं तो माखन भी उनका है, माखन बनाने वाला उनका है, वो ही उनकी शक्ति है, माखन भी उनकी शक्ति का स्वरूप है, रूपांतरण है, और जो बनाने वाला है वो भी उनकी शक्ति है, तो फिर क्या गलती है? तो इन चीजों को हमें समझने के लिए सृष्टि लीला का श्रवण बहुत आवश्यक है। तो फिर ऐसे उन्होंने प्रश्न किए परीक्षित महाराज ने, और दसवें श्लोक से आगे ग्यारहवें श्लोक से सुखदेव गोस्वामी प्रार्थनाएं करना प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर उनकी प्रार्थनाएं हैं, इसीलिए कभी कभी ये जो हम लोगों ने नियम बनाया है कि एक घंटे के अंदर हम लोग एक अध्याय की पूर्ति करेंगे, कभी कभी दुख बहुत होता है कि क्यों ये नियम बना लिया। इतनी सुंदर प्रार्थनाएं सुखदेव गोस्वामी जिसमें सारा ज्ञान दे रहे हैं, तो इन पे तो एक एक प्रार्थना पर बड़ी लंबी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हम लोग नियम में चलेंगे तो प्रयास करेंगे। तो ये सुखदेव गोस्वामी जैसे हमने बताया था पहले मंगलाचरण करना भूल गए उत्साह में, लेकिन अब उन्होंने कहा प्रश्न किया है अब मुझे पूरा बोलना है, थोड़ा पहले मंगलाचरण। तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। वो कहते हैं कि मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, भौतिक सृष्टि की रचना के लिए, भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के तीन गुणों को वो स्वीकार करते हैं। तो देखिए प्रार्थनाओं में ही वो ज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं इस सृष्टि का। तो अभी नमन कर रहे हैं कि मैं नमन करता हूँ उन भगवान को जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं का अर्थ क्या है, उसके अधीन नहीं आते हैं, स्वीकार करते हैं। तो कैसे करते हैं उसका वर्णन आगे करेंगे कि जैसे तीनों गुणों के लिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करते हैं, वो सब वर्णन आएगा, लेकिन स्वीकार करते हैं। तो उन कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। फिर वो आगे कहते हैं कि मैं उन भगवान को नमन करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों के समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि वो सबको समान देखते हैं, जो भक्त हैं उनकी भक्ति को बढ़ाते हैं, जो अभक्त हैं उनकी जो अभक्तिपूर्ण प्रवृत्तियाँ हैं उसको नाश करते हैं। तो दोनों को समान देख रहे हैं, लेकिन अभक्त वो समझ नहीं पाता और भक्त उसको जान लेता है। भक्त कौन है? भक्त वो है जो कृष्ण की कृपा को देखता है, वो भक्त है जो अपने चारों ओर चीज़ों को देखकर कृष्ण की कृपा को याद करे, ये जान ले कि ये जो भी है मेरे जीवन में कृष्ण की कृपा है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम्, जो भी है भगवान की कृपा, तो ये भक्त है। तो इसीलिए भक्तों के जीवन में ऐसा वो करते हैं। और फिर वो आगे वर्णन करते हैं कि मैं नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और हमेशा वे अपने धाम में रहते हैं इत्यादि, भगवान का वो अब वर्णन करने लगते हैं। और फिर वो कहते हैं भगवान के महत्व को बहुत सुंदर श्लोक में, श्लोक नंबर 15 में वो कहते हैं, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यच्छ्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो किनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ? जिनका केवल यत् कीर्तनम, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनका केवल कीर्तन, यत् स्मरणम उनका केवल स्मरणम, यदीक्षणम दर्शनम, यत् वंदनम उनका केवल वंदन, यत् श्रवणम उनका केवल श्रवण, और यदाहरणम उनकी केवल पूजा करने से सारे पाप तुरंत धुल जाते हैं। देखिए सुखदेव गोस्वामी कितने महत्वपूर्ण बात करें, केवल कृष्ण का नाम लेने से यत् कीर्तनम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप सबके पाप धुल गए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, केवल स्मरण करने से कृष्ण का पाप धुल जाते हैं। तो ये बड़े, इसीलिए हमने कहा बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, दुर्भाग्य से हम लोग बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो ऐसे वो कहते कहते फिर कहते हैं कि मैं उन श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो भक्तों के लिए सारी अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं। और फिर इस श्लोक के पहले श्लोक में वो कहते हैं, ये जो श्लोक बोर्ड पर लिखा है इसके पहले श्लोक में वो कहते हैं कि तपस्वियों का तप, दानियों का दान और या फिर जितने भी लोग जो भी कार्य करते हैं उनकी पूर्णता कब है, जब वो भगवान की भक्ति करें। तो वो कहते हैं बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यशलब्ध कार्यकर्ता, दार्शनिक, योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के अनुयायी भी, अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों में भगवान की सेवा को समर्पित किए बिना कोई कुशलता प्राप्त नहीं करते। मतलब वो कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा दानी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा योगी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता, कुछ भी हो, जब तक भगवान की सेवा नहीं करता जीवन व्यर्थ है। और भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, अभी उन्होंने बड़ा वर्णन किया तपस्वियों का, ज्ञानियों का, योगियों का, बड़े बड़े लोगों का। तो मन में प्रश्न आया कि क्या उनके लिए यह भक्ति, क्या वही भगवान की भक्ति करके प्राप्त कर सकते हैं? हमें तपस्या करनी है, दान करना है, योग करना है, वेद पाठ करना है। तब फिर वो इस श्लोक को कहते हैं कि नहीं, भक्ति किसके लिए है। बहुत सुंदर श्लोक जो हम लोगों ने आज पाठ किया, तब वो उसको कहते हैं किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर, जितने भी अलग अलग श्रेणियां उन्होंने बताई कि आप ये मत सोचिए कि बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े योगियों के लिए केवल भक्ति है। किराट हुनांद्र हुन, ऐसे प्रभुपाद इस तात्पर्य में इन सब का वर्णन करते हैं, कौन है किराट, कौन है हुन, कौन है आंध्र, आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश वाले। तो देखिए भागवत में वर्णन हो गया, भाग्यवान लोग हैं, तो भागवत में वर्णन हो गया उनका, और वे लोग भक्ति को प्राप्त करेंगे, घोषणा कर दी भविष्यवाणी 5000 साल पहले, और आज हम लोग देख रहे हैं इतना हो रहा है आंध्र। तो किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकश आधीर शुंभ यवना खसा आदि, ये सारी जातियाँ दी गई हैं, इनका सबका वर्णन महाभारत में हुआ है कि कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन हैं। तो आज ये दुनिया के अलग अलग जगहों में, जर्मनी, रशिया, ग्रीक, ये सब वर्णन है। तो देखिए आज सारे लोग भक्ति कर रहे हैं उस स्थान के, आंध्रा वाले भी। तो क्या वर्णन किया कि ये सब कैसे भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, एक मार्ग से भक्तों की शरण ग्रहण, भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं बस। तो कितना सरल उन्होंने बताया कि कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं, दान की आवश्यकता नहीं, योग की आवश्यकता नहीं, वेद पाठ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, भक्तों की शरण लेना बस। तो फिर जब ऐसे लोग भक्तों की शरण लेकर प्राप्त शुद्ध हो सकते हैं, तो फिर योगी दानी इत्यादि का कहना ही क्या, लेकिन उनको भी भगवान की शरण लेनी ही पड़ती है। तो इस तरह से वो प्रार्थनाएं करते हैं, और आगे बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं श्रीयपति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपतिर धरापतिर। तो भगवान कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण सबके स्वामी, श्रीयपति लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, धरापति पृथ्वी के स्वामी हैं, यज्ञपति यज्ञों के स्वामी हैं, लोकपति प्रजापति प्रसीदतामय भगवान सतामपति। तो ऐसे जो भगवान हैं वो मेरे ऊपर कृपा करें, प्रसीदता या मेरे ऊपर दया करें, मुझ पर प्रसन्न हों। तो ऐसे वो शुभदेव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में वर्णन करते हैं भगवान का, विशेष करके श्री कृष्ण का वो वर्णन करते हैं, मुकुंद नाम लेते हैं, क्योंकि ये बतलाने के लिए कि किस भगवान को वो कह रहे हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि समय मुकुंदो भगवान प्रसीदताम, तो वो कृष्ण वही मुकुंद वो मुझ पर प्रसन्न हो। तो ऐसा फिर कहकर अंत में वो कहते हैं कि भगवान ने प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान दिया और उनको पर कृपा की, तो भगवान मुझ पर भी ऐसी कृपा करें कि मैं ये विषय बड़ी अच्छी तरह से बता सकूं। और ऐसे कहकर फिर वो परीक्षित महाराज से कहते हैं कि पूर्व में नारद जी ने प्रश्न किया था, यही प्रश्न जो तुम कर रहे हो यही नारद ने प्रश्न किया था ब्रह्मा से, मैं उस संवाद को कहता हूँ। तो ये नियम है भागवत कहने का या वेदों को या शास्त्रों को कहने का कि पूर्व इतिहास में जो संवाद हुए हैं उनको कहना। जैसे सुत गोस्वामी शुकदेव गोस्वामी की कथा कह रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी की कहेंगे, फिर बीच में विदुर और मैत्रीय संवाद आएगा और उसमें भी कई इतिहास आएंगे। तो ये नियम है, इसीलिए ऐसे नियम को पालन करते हुए महाजन अथॉरिटीज़ को, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनको हम लोग, उनकी उन्होंने जो संवाद किया उसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम लोग भागवत में क्या कहते हैं, जो प्रभुपाद ने समझाया, जो आचार्यों ने समझाया, बस उसको प्रकट करते हैं। तो ये परंपरा है और इसी परंपरा के द्वारा हम सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इस सही ज्ञान में रहें और जैसे प्रभुपाद समझा रहे थे कि अंधकार के मार्ग से प्रकाश की ओर जाएं, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है।